සීලං ක්‍රමා අමරෝ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وقد ورد في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آقا نامدار تاجدار مدینہ کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے اللہ نے آپ کی ذات سے ایسے مبارک اور عقل کو حیران کرنے والے ایسے قصے سامنے آئے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان کو ماننا پڑا کہ آپ اللہ کے واقعتاً سچے نبی ہیں उन्हीं मुबारक वाकयात में से, उन्हीं मुबारक किस्सों में से एक मेराज का वाकया है। मेराज का जो वाकया है, बाद हजरात मुहद्दिसीन के लिखने के मुताबिक रजब महीने के अंदर ये वाकया पेश आया। जो रजब का महीना इस वक्त हमारा गुजर रहा है, और उसी रजब के हवाले से मैंने एक दुआ आपके सामने पढ़ी है। जो हर मुसलमान को पढ़ते रहना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था, कि हर महीने का पहला चांद होता था तो हुजूर एक दुआ पढ़ते थे। लेकिन जब रजब का चांद होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास दुआ पढ़ते थे। और वो दुआ हमें रजब और शाबान के महीने के अंदर पढ़ते रहना चाहिए। दुआ के मुबारक अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमदान। ए अल्लाह, तू हमें रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा, और तू हमें रमजान तक पहुंचा देना, रमजान की इबादत से मालामाल फरमा देना। ये दुआ है। तो बाग हजरात मुहद्दिसीन के कौल के मुताबिक इसी रजब महीने की 27वीं तारीख को मेराज का वाकया पेश आया। और आज गालिबन 28वीं रात है, तो मैंने सोचा कि आप हजरात के सामने अल्लाह की तरफ से दिल में बात आई कि मेराज के मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज करो। इसलिए कि हमारे बहुत से मुसलमान ऐसे हैं कि जिनको बेचारों को पता ही नहीं है कि मेराज किस चीज का नाम है। हमारे एक बड़े बुजुर्ग ने बड़ी दर्द भरी बात सुनाई थी। कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक चांसलर आए हुए थे, उन्होंने सुनाया कि गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है आईएएस ऑफिसर की, बहुत ऊंची सर्विस गिनी जाती है, जिसके अंदर लोग कलेक्टर बनते हैं, ऐसे ऊंचे दर्जे की जिनको नौकरी मिलती है। तो कहा उसके लिए इंटरव्यू था, कुछ उम्मीदवार थे, उसमें एक मुसलमान लड़की भी थी। तो कब बड़ी खुशी की बात हुई कि कलेक्टर जैसे ऊंचे ओहदे के इंटरव्यू के लिए एक मुसलमान लड़की भी उम्मीदवार है। तीन चार आदमी इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे, उसमें से एक प्रोफेसर साहब भी थे जो मुसलमान थे, चांसलर थे वो। जब एक के बाद एक टन बाई टन उस मुसलमान लड़की का नंबर आया तो चांसलर साहब ने ये सोचा कि जो सवालात उसको करने थे वो तो पूछ लिए, एकाध सवाल जरा इस्लामी भी पूछ लो उसको, कोई दीनी मालूमात का भी एकाध सवाल कर लो। उस लड़की से पूछा कि तू इतना ऊंचे दर्जे का इंटरव्यू देने के लिए आई है, कलेक्टर बनने जा रही है, मुल्क का एक अहम ओहदा संभालने जा रही है, तू मुसलमान घराने की बेटी है, एक सवाल मैं तुझसे दीन के मुतालिक करता हूँ, वो ये है कि हमारे नबी ने मेराज की थी तो ये मेराज है क्या चीज? तो आप अंदाजा लगाइए कि जो लड़की कलेक्टर बनने के लिए आई है और उसने सारी की सारी डिग्रियां हासिल की हुई है, उस लड़की को पूछा कि मुसलमान के नबी ने जो मेराज की थी वो मेराज क्या चीज है, तो वो मुसलमान बच्ची ये जवाब देती है कि मेराज का मतलब होता है मेरा राज, मेराज का मतलब होता है मेरा राज। अब आप सोचिए कि एक मुसलमान इतना सारा पढ़ ले और उसको खबर न हो कि मेराज है क्या चीज और नबी की मेराज है क्या चीज, तो उससे बढ़कर और अफसोस की क्या चीज हो सकती है। हालांकि ये वाकया ऐसा है कि अल्लाह ने कुरान में भी बयान फरमाया दो जगहों पर और हदीस पाक के अंदर तो उसके जखीरे भरे हुए हैं। इसलिए सोचा कि आज आपके सामने मेराज का मुख्तसर लफ्जों के अंदर तस्किरा कर दूं। मुख्तसर इसलिए कह रहा हूं कि है बड़ा लंबा चौड़ा वाकया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा से तशरीफ ले जा रहे हैं मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस तक और बैतुल मक़दिस से आगे बढ़ के तशरीफ ले जा रहे हैं सातों आसमान और उससे भी ऊपर तक और फिर वहां से लौट करके दोबारा मक्के मुकर्रमा तशरीफ ला रहे हैं। इतना तवील सफर और हमारे वियारा के मुसलमान ये चाहें कि मैं एक घंटे के अंदर आपको सुना दूं, इसलिए मुझे पहले कहना पड़ा कि मुख्तसर लफ्जों के अंदर सुनाना चाहता हूं। अल्लाह करे कि कुछ काम की और जरूरी बातें आपके सामने आ जाए। मेराज में हमारे हुजूर बहुत ऊपर तशरीफ ले गए, इतने ऊपर तशरीफ ले गए कि वहां पर कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता, कोई नबी और रसूल भी नहीं जा सकता जितनी ऊंचाई के ऊपर हमारे हुजूर तशरीफ ले गए। और वो इतने ऊपर तशरीफ ले गए कि अल्लाह के दरबार में दुनिया में रहते हुए पहुंच गए। अब एक छोटी सी बात मैं आपको अर्ज करूं, हुजूर को इतना ऊंचा मकाम कैसे मिला? सातों आसमान के भी ऊपर और अल्लाह के अर्श के सामने हाजिरी हुई, ये एक समझने की हकीकत है। जब ये महाराज का किस्सा पेश आया, उससे चंद दिन पहले मक्का शरीफ में दो बड़े अजीब किस्से पेश आए थे, थोड़े दिन पहले। और दोनों किस्से ऐसे थे कि उसमें मक्का के कुरैशियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा जलील और बड़ा रुसवा किया था, बहुत जलील किया, बड़ा रुसवा किया। एक वाकया है शिया भी अभी तालिब का, मैं मुख्तसर इशारा कर दूं कि ये कैद खाना बनाया था जहां हमारे हुजूर को, हुजूर के सहाबा को और घर वालों को एक लंबे जमाने तक मक्का वालों ने कैद रखा। और पूरे मक्का वालों ने अल्लाह के नबी का सोशल बायकॉट किया था, कोई उनको खाना नहीं दे सकता, अनाज नहीं दे सकता, कोई उनको पानी नहीं दे सकता, कोई उनसे बातचीत नहीं कर सकता। पूरे मक्का वालों ने बायकॉट किया। ऐसे खतरनाक हालात पेश आए जो आप सुनते हैं कि हुजूर ने पत्ते चबाए, ये इसी शियाबे अभी तालिब का वाकया है। जब अनाज नहीं मिलता तो पत्ते चबाने की नौबत आई, बहुत जलील किया। हुजूर जब जेल खाने से निकले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, पड़ोस में ताइफ है। ताइफ वालों ने इतना जलील किया कि पत्थर मार करके लोहान कर दिया, वहां से निकाल दिया। ये दो किस्से जिल्लती के हुए, एक जेल में डाला, सोशल बायकॉट किया, और दूसरा ताइफ वालों ने नबी को जलील और रुसवा करके निकाला। अल्लाह सुबहानहु व ताला सारा मंजर देख रहे हैं। ए दुनिया वालों, तुम मेरे नबी को जलील कर रहे हो, तुम मेरे नबी को रुसवा कर रहे हो, मैं अपने नबी को इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचाता हूं कि जहां आज तक कोई मखलूक नहीं पहुंच सकी और न कयामत तक कोई मखलूक पहुंच सकेगी। तुम जलील कर लो, हम उनको ऊंचा उठाते हैं। इसलिए कि अल्लाह के यहां एक कानून है, खुदा करे ये चीज हमारी समझ में आ जाए। फरमाया के मन तवाज़ा लिल्लाह फकद रफाहु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए नीचा होता है, जो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उस इंसान को ऊंचा उठाते हैं। जरा अल्लाह के लिए झुकना सीखो, जरा अल्लाह के लिए नीचे होना सीखो, फिर देखो कि अल्लाह कितने ऊंचे मकाम से नवाजते हैं। तो ताइफ वाले, मक्का वाले नबी को नीचा कर रहे, जलील कर रहे, और अल्लाह फरमा रहे कि तुम मेरे नबी को जलील करो, मैं नबी को ऊंचा करता हूं, और ऐसा ऊंचा करता हूं कि दुनिया का कोई इंसान इतना ऊंचा नहीं हो सकता। इधर ये दोनों किस्से पूरे हुए, जेल खाने का, सोशल बायकॉट का, और ताइफ का। हुजूर वहां से तशरीफ लाए
और چند دنوں میں اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر اپنے نبی کو بلایا. ایک رات تھی مکہ کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک قریبی رشتہ دار حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا, جیسے حضور کا نام آئے تو ہم کیا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی کا نام آئے یا صحابی عورت کا نام آئے تو ذرا تکلیف لے کر کے پڑھا کرو رضی اللہ تعالی عنہ, ذرا ہوٹ کھلایا کرو, انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اللہ جنت عطا فرمائیں گے. صحابی کا نام آئے تو پڑھے رضی اللہ تعالی عنہ, اور صحابی عورت کا نام آئے تو پڑھو رضی اللہ تعالی عنہا. تو حضور آرام فرما رہے ہیں حضرت ام حانی کے مکان میں, اچانک چھت پھٹی, تھوڑی سی نیند لگی ہوگی ہلکی ہلکی, اچانک چھت پھٹی اور دیکھا کہ اوپر سے حضرت جبرائیل اتر کے تشریف لا رہے ہیں. حضرت جبرائیل کے ساتھ اور فرشتے بھی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. حضور حضرت ام حانی کے مکان میں سے اٹھے, آج بھی حرم شریف میں وہ نشانی موجود ہے جہاں حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا. کبھی مکہ مکرمہ میں ملاقات ہو جائے تو یاد دلا دینا, میں لے جا کر کے انشاءاللہ وہ جگہ بھی آپ کو دکھلاؤں گا کہ اس جگہ پر حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا. حضرت جبرائیل نے اور فرشتوں نے آ کر کے اٹھایا, حضور اٹھے, کعبہ کے سامنے تشریف لے گئے جہاں حتیم ہے, وہاں جا کر حضور دوبارہ لیٹ گئے. ان آنے والے فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیرا. یہ تیسری مرتبہ ہے سینے کو چیرنا, ایک بچپن میں ہوا تھا, ایک پیغمبری ملی اس وقت ہوا تھا, اور ایک معراج سے پہلے ہوا تھا. یہ تیسری مرتبہ ہے سینے مبارک کو چیرا, اندر سے دل نکالا, اور اس دل کو فرشتوں نے زمزم کے پانی سے دھویا. بڑا بابرکت پانی ہے زمزم کا. اگر فرشتے چاہتے تو حوض کوثر سے پانی لے کر کے آتے, لیکن نبی کے سینے کو دھونے کے لیے فرشتوں نے زمزم کا پانی اٹھایا. معلوم ہوا کہ زمزم بھی بڑی برکت والا پانی ہے. پھر ایک سونے کا کنچا لائے, تشت لائے, اس میں ایمان بھرا ہوا تھا, حکمت بھری ہوئی تھی, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے اندر بھرا, اور پھر دل کے اوپر تانکے لگا دیے, ٹھیک کر دیا, اور دو کندھوں کے بیچ میں ایک مہر لگا دی, اسٹامپ. جیسے آپ لوگ ہمارے پاس فتویٰ لینے آتے ہیں, ہم نیچے اسٹامپ لگاتے ہیں فتوے کی, ایسے فرشتوں نے یہاں اسٹامپ لگائی آپ کے نبی اور پیغمبر ہونے کی, اس کو مہر نبوت کہتے ہیں. सीना ठीक कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मस्जिद हराम से बाहर निकले, एक बुराक लाया गया। बुराक तो आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने खामोखा उसकी तस्वीरें बना रखी है। वो जहालत है, जहालत। ऐसे घोड़े का फोटो होता है और सर उसका औरत जैसा होता है और पर बने होते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में ईमान को बेचने वाले। ये ईमान फरोश लोग हैं जो बुराक की तस्वीर बनाए। तो बुराक लाए, ये जन्नती जानवर है, सफेद रंग का। ये जो हमारे यहाँ घगा है इससे थोड़ा बड़ा होता है और खच्चर से थोड़ा छोटा होता है। और इन दोनों फरिश्तों ने, हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर बिठा दिया। अब हुजूर बुराक पे बैठे तो बुराक मस्ती करने लगा। जो लोग घोड़े पालते हैं उनको मालूम है कि नया आदमी ऊपर बैठ जाए तो घोड़ा उछलने लगता है, मालिक बैठे तो कुछ नहीं करता। तो हुजूर पहली मर्तबा बैठ रहे हैं तो बुराक शरारत करने लगा। हजरत जिब्राइल ने उसके कान में कहा कि तुझे मालूम है तेरे ऊपर आज कौन बैठा है? आज तक जितने अल्लाह के बंदे तेरी पीठ पर बैठे उनमें सबसे अफजल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तेरी पीठ पर तशरीफ रखते हैं। जब ये बात बुराक ने सुनी तो उसकी तूफान मस्ती भी खत्म हो गई, एकदम सुकून से ठहर गया। और जो पहले तूफान हुआ उस पर वो पसीना पसीना हो गया कि नबियों के इमाम मेरे पीठ पे बैठे हैं और मैंने तूफान कर दिया, पसीना पसीना हो गया। साथ में हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल बैठे और बुराक ने उड़ना शुरू किया और बुराक की स्पीड में आपको क्या बयान करूं। इस जमाने के अंदर जो फास्ट से फास्ट एरोप्लेन हो सकते हैं, सुपरसोनिक कैटेगरी के, उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से ये चलने वाला जानवर, एक कदम यहां है तो दूसरा कदम नजर से भी आगे है, दूर जाकर के दूसरा कदम पड़ता है। हवा में उड़ते हुए ये जानवर रवाना हुआ, अल्लाह के नबी उस पर सवार है। उड़ते उड़ते देखा कि एक खजूर की बाड़ियों वाला शहर आया है, जहां खजूर की बाड़ी बाड़ी है। जिब्राइल अमीन ने कहा, हुजूर बुराक को नीचे उतारना है। बुराक उतारा तो हुजूर यहां दो रकात नमाज अदा फरमा लीजिए। हुजूर ने दो रकात नमाज अदा फरमाई। जिब्राइल ने पूछा कि हुजूर आपको मालूम है आपने कहां दो रकात नमाज पढ़ी? हुजूर ने फरमाया, नहीं मुझे पता नहीं, ये हदीसे पाक बयान कर रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि ये कहां पर मैंने दो रकात नमाज पढ़ी। जिब्राइल अमीन ने कहा कि हुजूर ये वो मुबारक जगह है जहां आपको हिजरत करके आना है, ये मदीने मुनव्वरा है। फिर बुराक ने उड़ना शुरू किया, कुछ आगे चले। जिब्राइल अमीन ने फिर बुराक उतारा, कहा हुजूर यहां भी दो रकात नमाज पढ़ लीजिए। दो रकात नमाज पढ़ी। पूछा हुजूर पता है आपने कहां पढ़े थे? कहा नहीं मुझे पता नहीं। तो कहा कि इन्नक बिलवा बिल मुकद्दसी तुवा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जहां पर दो रकात नमाज अदा की ये वादिये सीना है जहां अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से बातचीत की थी। वत्तीनी वज़ैतून वतूर सीनीन, ये वतूर सीनीन जहां हुजूर ने दूसरे नंबर पर दो रकात नमाज पढ़ी। फिर बुरा कोड़ा तीसरी जगह पर उतरे, दो रकात नमाज पढ़ी। जिब्राइल के पूछने पर हुजूर ने यही कहा मुझे कुछ पता नहीं कहां दो रकात पढ़ी। जिब्राइल कहते हैं व इला मदियन अखाहुम शुआइबा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जहां दो रकात नमाज पढ़ी ये हजरत शुएब अलैहि सलाम का शहर है। अल्लाह के नबी हजरत शुएब अलैहि सलाम का शहर है, मदियन है, जो मूसा अलैहि सलाम के खुसर होते हैं, हजरत शुएब अलैहि सलाम। फिर वहां से उड़े, उड़ते उड़ते चौथी जगह पर हुजूर ने नमाज अदा फरमाई। वही सवाल जवाब, कहां नमाज पढ़ी? तो कहा पता नहीं। कहा हुजूर ये बैतुल लहम है, बैतुल लहम जिसको आजकल अंग्रेजी में कहते हैं बैतल हम, कहा ये वो जगह है कि जहां पर ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए थे वहां आपने दो रकात नमाज पढ़ी। फिर हुजूर उड़े, हवा में उड़े, रास्ते के किनारे के ऊपर एक बुढ़िया खड़ी थी, डोसी अम्मा। वो डोसी अम्मा हुजूर को आवाज दे रही है। जिब्राइल अमीन ने कहा हुजूर उस डोसी की तरफ आप मत देखिए, चलते रहिए। थोड़ा आगे चले तो एक बूढ़े अब्बा नजर आए, डोसे मियां, वो भी आवाज लगा रहे हैं हुजूर को। जिब्राइल कह रहे हैं हुजूर इस बुढ़े को भी मत देखिए, चलते रहिए। अब हुजूर पूछ रहे हैं कि ये डोसी कौन है, ये डोसा कौन है, जरा उरखाण तो कराओ, तारुफ तो कराओ। देखिए कितनी सारी बातें आ गई, चार जगहों पर नबी ने नमाज पढ़ी, नबी को खबर नहीं, नबी जिब्राइल से पूछ रहे हैं, डोसी को देखा, डोसे को देखा, नबी पहचानते नहीं, जिब्राइल से पूछ रहे हैं। यही बात हम लोगों को समझाते हैं कि इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा वयुनज्जिलुल गैस वयालमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह के सिवा नबी के पास भी गैब का इल्म नहीं है। नबी को भी सवाल करना पड़ता है, गैब की बात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास। अगर नबी को गैब का इल्म हो तो वही और कुरान उतारने की जरूरत क्या है? सिर्फ अल्लाह के पास गैब का इल्म होता है, इसलिए तो हुजूर पूछ रहे हैं बार बार, जिब्रील ये कौन वो कौन। जिब्रील कह रहे हुजूर वो जो डोसी थी ना, डोसी जो आपको आवाज दे रही थी, जरा ध्यान से सुनिए वो डोसी कौन थी। जिस डोसी की प्रेम के अंदर आज सारी दुनिया दीवानी है, सब उसके दीवाने हैं उस डोसी के चक्कर में। जिब्राइल अमीन ने कहा ए अल्लाह के नबी वो डोसी कोई और नहीं है بلکہ وہ دنیا کی ایک شکل اللہ نے آپ کو دکھلائی ہے، وہ دنیا کی، وہ 1400 سال پہلے حضور اس کو دیکھ رہے ہیں ڈوسی کی شکل کے اندر، اور جبرائیل نے ساتھ میں یہ بھی کہا حضور دنیا کی عمر اتنی باقی ہے جتنی ایک ڈوسی کی زندگی باقی ہوتی ہے، اتنی باقی ہے. وہ تو 1400 سال پرانی بات ہو گئی، اب تو وہ سکرات کی حالت میں چل رہی ہے، اور کب وہ ڈوسی مر جائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. معلوم ہوا کہ یہ دنیا اب ختم ہونے والی ہے، قیامت سامنے کھڑی ہوئی ہے، اب دور نہیں ہے، بہت قریب ہے قیامت. اب چل رہے معراج کے واقعے میں، ورنہ میں آپ کو ابھی ثبوت دیتا حدیث کی روشنی میں کہ قیامت کتنی قریب ہے، کتنی نشانیاں نبی نے بتلائی، اور وہ سب نشانیاں دنیا میں سامنے ہمارے، دو چار پانچ بڑی بڑی نشانیاں باقی ہے، وہ بس آخری الارم ہے. کہ حضور وہ ڈوسا، تو کہا وہ ڈوسا کوئی اور نہیں بلکہ وہ مسٹر شیطان تھا جو اس وقت یہاں بھی محنت کر رہا ہے، کسی کو میٹھی نیند سلا رہا ہے تھپکی دے کر کے، کسی کو گھڑی پر نظر ڈلوا رہا ہے کہ بیان لمبا ہو رہا ہے گھر چلے جاؤ، وہ یہاں بھی اس وقت محنت میں لگا ہوا ہے. تو کہا حضور وہ جو ڈوسی تھی وہ دنیا کی شکل تھی، اور ڈوسا جو تھا وہ شیطان تھا، وہ اپنی طرف آپ کو کھینچنا چاہتے تھے. حضور ہوا میں اڑ رہے، ایک جماعت نے حضور کو سلام کیا. کیسے سلام کیا؟ کہا کہ السلام یا اولو، السلام یا آخرو، السلام علیک یا حاشرو. وہ جماعت کے لوگوں نے سلام کیا کہ سلام ہو آپ پر اے سب سے پہلے نبی، سلام ہو آپ پر اے آخری نبی. وجود کے اعتبار سے پہلے، دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری. والسلام علیک یا حاشرو، سلام ہو آپ پر اے سب کو جمع کرنے والے نبی. جماعت نے سلام کیا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا حضور اس جماعت کے سلام کا آپ جواب دیجئے. حضور نے جواب دیا کہ حضور یہ جو جماعت ہے نا، یہ جماعت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ تین نبی کی جماعت نے آپ کو سلام کیا ہے. حضور نے ان کا جواب دیا. اور مسلم شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. کیسے دیکھا؟ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اپنی قبر میں کھڑے ہیں، اور کھڑے کھڑے قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں. اس حال میں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. حضور فرماتے ہیں ایک جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آسمان پہ اڑے. اب ذرا دھیان سے سنیے، معراج کے واقعے میں یہ گھڑ کی بات ہے جو ہم نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں. اللہ نے اس مبارک سفر کے اندر اپنے نبی کو کچھ آخرت کے احوال بھی بتلائے تاکہ آپ اپنی امت کو بتلائیں. حضور نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر بہت سارے آدمی ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں. یہ تو ہمارے ناخن ناخن ہیں، تانبے کے ان کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ناخن کے ذریعے سے اپنے چہرے کو بیٹھے بیٹھے چھیلتے ہیں، اپنے سینے کو چھیلتے ہیں. अंदर से खून निकलता है, गोश्त निकलता है, बड़ी तकलीफ होती है, फिर अच्छा हो जाता है, फिर छीलते हैं, फिर तकलीफ होती है, फिर अच्छा होता है। बस ये बैठे बैठे यही धंधा करते हैं, चेहरे को छीलना, सीने को छीलना, अंदर से खून और गोश्त निकालना, तकलीफ होती है, फिर अच्छा होता है, फिर तकलीफ होती है। हुजूर ने पूछा जिब्राइल अमीन से, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं जिनके नाखून तांबे के और वो अपने चेहरे को खुद छील रहे हैं? हजरत जिब्राइल अमीन ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर लोगों की गीबतें करते हैं, लोगों की इज्जत के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, मरने के बाद अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कयामत तक ये सजा देंगे कि उनके नाखून तांबे के बना दिए जाएंगे, और वो बैठे बैठे अपने आप को छीलते रहेंगे, तकलीफ उठाते रहेंगे। ये गीबत करने वालों की, लोगों की इज्जत लेने वालों की ये सजा है जो हुजूर को अल्लाह ने दिखलाई। हुजूर आगे चले, और भी दो चार बातें जिक्र कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हवा के अंदर उड़ते उड़ते देखा, आखिर ऊपर एक आदमी है, नहर में तैर रहा है, और बड़े पत्थर का लुकमा बनाता है। पत्थर का लुकमा कोई मामूली चीज है, आदमी एक पथरी पेट में आ जाए तो परेशान हो जाता है, और ये तो पूरे पत्थर को खा रहा है, तकलीफ हो रही है उसको, लेकिन वो पत्थर खा रहा है। पूछा हुजूर ने हजरत जिब्रेल से, जिब्रेल ये कौन आदमी है, पानी में तैर रहा है, पत्थर खा रहा है? जिब्राइल अमीन ने कहा कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर सूद और ब्याज का माल खाते हैं, ये सूद खाने वाले, ब्याज खाने वाले, अल्लाह ताला इनको कयामत तक ये पत्थर खाने का अजाब देंगे, और कयामत के बाद की सजा तो अलग, ये मौत से लेकर कयामत तक का तज़किरा कर रहा हूं। फरमाया कि इन्नल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا। जो लोग दुनिया में सूद खाते हैं, ब्याज का माल खाते हैं, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि वो कयामत के दिन जब अपनी कब्रों से निकल करके आएंगे तो ला यकूमून इल्ला कमा यक ला यकूमून इल्ला कमा यकूम यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, के जैसे किसी को जिन्नात लग जाए, किसी के ऊपर भूत लग जाए, डाकन लग जाए, और वो आदमी कैसे बकवास करता है, लवारे चढ़ जाता है और पागल और दीवाना हो जाता है, इस तरीके से ब्याज खाने वाले कल कयामत के दिन कब्रों से उठ करके आएंगे, और अल्लाह ऐसों को जहन्नम की आग में डालेंगे, ये ब्याज खाने वाले। फिर हुजूर आगे चले, खेडूत को देखा, खेडूत किसान, अजीबो गरीब खेडूत है, वो बेचारा बीज बोता है, शाम तक में खेती तैयार, आज तक कोई हाइब्रिड बीज ऐसा इजाद ही नहीं हुआ दुनिया में, कि सुबह में लगाओ शाम को खेती हो जाए। अल्लाह के नबी देख रहे हैं कि अजीब खेरू थे, सुबह में बीज लगाता है शाम को खेती तैयार, काट के घर ले भी आया और दूसरे दिन खेत में गया तो फिर खेती कल जैसी थी वैसी की वैसी। अजीब गरीब खेती, रोज काटो रोज खेत भर जावे। पूछा जिब्राइल से कि अरे ये खेडूत कौन है, ये खेती कैसी है? तो कहा कि मसलुल लदीन युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, जिन्होंने अपना पैसा अपना माल अपना रुपया अल्लाह के दीन के खातिर लगाया, मस्जिद में लगाया, मदरसों में लगाया, हॉस्पिटल में लगाया, कुएं में लगाया, बेवा के ऊपर लगाया, यतीम पर लगाया। जिस इंसान ने अपना माल दीन की निस्बत पर लगाया, अल्लाह उनके माल को जन्नत में इस शक्ल से बदल देंगे। रोज की रोज खेती, रोज की रोज जन्नत की नेमतें। फिर हुजूर आगे चले, इसी मेराज के सफर का तस्करा कर रहा हूं। चलते चलते एक जगह के ऊपर देखा कि बहुत सारे इंसान हैं और फरिश्ते बड़े बड़े पत्थर लेके खड़े हैं, चट्टान लेके खड़े हैं, उनके सरों पर मारते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया में फर्ज नमाज में सुस्ती करते थे, फर्ज नमाज में सुस्ती करते थे। और कुरान ने तो फर्ज नमाज में सुस्ती करने वालों को मुनाफिक की निशानी बतलाया है, मुनाफिक की निशानी। वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا, یہ نفاق والوں کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل سست بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں, سست۔ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ منافق تھے جو سست سست بھی کھڑے رہتے تھے, आज के मुसलमान उनके भी बाप है, उन मुनाफिकों से भी दो कदम आगे हैं, आते ही नहीं मस्जिद में, न रहे बांस न बजे बांसुरी का। मस्जिद में आवे और सुस्ती करे तो सजा होवे, ना आवत मत ने, ताकि सजा का मसला ही पैदा नहीं होवे। कहा के वैजा कामू इलस्सलाती कामू कुसाला, नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त बन करके खड़े होते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, नमाज में अल्लाह का जिक्र बहुत मामूली करते हैं। अल्लाह का जिक्र बहुत मामूली, अल्लाह के जिक्र का क्या मतलब? नमाज में कुरान की सूरतें भी छोटी छोटी है ना, कोई इमाम जरा लंबी पढ़ दे तो क्या उसके खैर है? आ रहा है रमजान का मुबारक महीना, लोग हमारे पास हाफिज कुरान लेने आते कि मुफ्ती साहब तरावी के लिए अच्छे हाफिज साहब दो। मैं पूछता हूं धीरे से कि अच्छे का मीनिंग क्या है वो तो बताओ। तो कहा मुफ्ती साहब ऐसा सुपर फास्ट हाफिज साहब चाहिए कि वियारा में 10 मस्जिद है तो उसमें पहली तरावी हमारी यहां पूरी हो रहे, भले किसी को समझ में आवे के ना आवे। ऐसा सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस भी पीछे पड़ जावे, ऐसा हाफिज चाहिए। सुन लो एक हदीस सुना देता हूं, बस ज्यादा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, رب قارئ للقرآن والقرآن يلانا بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ ہیں کہ قرآن ان کے لیے لعنت اور بد دعا کرتا ہے، بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ کہ قرآن ان پر لعنت اور بد دعا کرتا ہے، اس لیے ایسے پڑھنے والے وہ بھی قرآن کے لعنت کے حقدار، اور ایسے حافظ کو لانے والے بھی گنہگار، اور ایسے حافظوں کو پسند کرنے والے بھی گنہگار۔ ایسے حافظ لاؤ کہ جو صاف صاف قرآن پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھے، ایسا قرآن کہ جس پر اللہ کی رحمتیں برسے، اللہ کا نور برسے۔ ایک رمضان کا تو مہینہ ہے، اگر سکون سے قرآن پڑھے۔ میرے بزرگوں، میں آپ سے کیا کہوں، انگلینڈ، امریکہ، جس کو ہم فحاشی کا انٹرنیشنل اڈا کہتے ہیں، اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات، آج وہاں جا کر کے سنو، اتنی بہترین تراویح ہوتی ہر ہر مسجد میں، ہر ہر مسجد میں، ایسا لگتا ہے کہ ہر مسجد کا امام حرم کا امام ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ 8 کلاک کی وہ ڈیوٹی کر کے آتے ہیں، کالی مجوری کر کے، سحری ان کی بس میں ہوتی ہے، افطاری ڈیوٹی پر ہوتی ہے، اور پھر آ کر کے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے کی تراویح میں کھڑے رہتے ہیں اور سکون سے تراویح سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے کہ 1.5 گھنٹہ آپ بیان بھی سنیں گے، 2 گھنٹے کی تراویح پڑی، اب 1.5 گھنٹے کا بیان بھی سنیں گے، پھر گھر جا کر کے سوئیں گے، اور یہاں سب بیکار بیٹھے ہوئے، پھر بھی ان کو یا لمون تالمون دھڑا دھڑ والے حافظ چاہیے۔ اس لیے یہ نظام بدلو تراویح کا، اچھے حافظ لاؤ۔ ایسا قرآن کس کام کا تو جو صحیح پڑھا نہ جائے، کوئی ضرورت، اس سے بہتر تو علم طرح کی تراویح پڑھو۔ جو حافظ بلڈوزر چلاتا ہو، قرآن کا حق ادا نہ کرتا ہو، اس سے بہتر ہے علم طرح کی تراویح پڑھنا۔ اچھی طریقے سے قرآن ہوئے، صاف صاف قرآن ہوئے، عمدہ قرآن ہوئے، رکو بھی اچھا ہوئے، سجدہ بھی اچھا ہوئے، پوری التحیات درود پاک اور دعا ہوئے، اس کے بعد سلام گرے اطمینان کے ساتھ۔ تو نماز کو شارٹ کٹ میں پتانا، اس کو تو نفاق کی نشانی بتائی گئی، اور قرآن کی بات ہے، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں اور نماز میں اللہ کا ذکر بہت معمولی اور تھوڑا سا کرتے ہیں۔ تو کہا، حضور، یہ فرض نماز میں سستی کرنے والی قوم ہے جن کے سر کچلے جا رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو فرض نماز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ جب آپ تھک جاؤ تو بتا دینا، بیان ختم کر دیں گے، ورنہ معراج کا واقعہ ایسا ہے کہ ابھی تو مسجد اقصا نہیں پہنچے، پھر ساتوں آسمان سے جانا ہے، وہاں سے ریٹرن مکہ آنا ہے، اتنا لمبا چوڑا قصہ ہے۔ اگر پوری تفصیلات روایت کے سامنے رکھ کے بیان کروں تو یقین فجر کی اذان انشاءاللہ ہو جائے، لیکن جب آپ تھک جائے تو بتا دیجیے، انشاءاللہ قصہ مختصر دعا کر دیں گے، اور وعدہ کریں گے کہ آئندہ آ کر کے سنائیں گے، ایک آدھ دعوت اور مل جائے۔ حضور آگے چلے، چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک عجیب قوم ہے، ہے انسان، ہے انسان، پورے بدن ننگے ہیں، مرد ہے، عورتیں ہیں، صرف ستر کی جگہ کے اوپر چتھرے باندھے ہوئے ہیں، صرف ستر کی جگہ پر چتھرا، باقی پورا بدن کھلا، مرد بھی عورتیں بھی۔ اور انسان ہونے کے باوجود اونٹ اور بیل کی طرح 4 ہاتھ پیر پر وہ چرتے ہیں، دونوں ہاتھ بھی زمین پہ رکھ کر، ہے انسان، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے، دونوں پیر زمین پر ہیں، और ऊंट और बैल की तरह चर रहे हैं। और क्या चरते हैं? जक्कूम और जरीय। जक्कूम ये अरबी लफ्ज है जिसको हम गुजराती में थोड़ कहते हैं। थोड़ आपने देखा होगा, कैक्टस अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, हरे हरे ग्रीन ग्रीन होते हैं, बड़े बड़े कांटे वाले कड़वे कड़वे थोड़ के झाड़। न देखे हो तो वधई चले जाओ, वहां के बाग के अंदर एक से एक थोड़ रखे हुए। एक मरतबा अहबाब कहीं सफर से हम लौट रहे थे, नमाज भी पढ़नी थी असर की, तो मुझे ले गए कि चलो मुफ्ती साहब बाग में असर भी पढ़ लेंगे और थोड़ देखने के वो भी देख लेंगे। मैंने कहा जो ढोर निखावे उसको हम देखने जावे, चलो खैर देख लेते हैं। गए देखने के लिए, तो आप कभी जाओ तो देखना कि वहां थोर की 40 के करीब जात रखी हुई है। उसमें बास थोर इतने बड़े बड़े हैं जैसे बड़ी साइज का तरबूज हो, और बड़े बड़े कांटे। अब सब लोग उसको जौक और मजे से देख रहे, मेरे दिल में आंसू आ रहे थे। मैंने अपने नौजवान दोस्तों से कहा, हमारे नवापुर के सब अहबाब थे, मैंने कहा उनसे कि दोस्तों तुम बड़े शौक से देख रहे हो, मेरा दिल रो रहा है इसलिए कि मेरे सामने कुरान की आयत चमक रही है कि ये थोर इतने बड़े बड़े कांटे वाले जहरीले और कड़वे, इसी थोर को अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को जबरदस्ती खिलाएंगे, जहन्नमियों को खिलाया जाएगा। ये तो दुनिया के थोड़ है, तो आखिरत के जहन्नम के कितने खतरनाक होंगे। तो हुजूर ने देखा एक कौम को जो पूरा बदन नंगा सतर की जगह पर चिथरे और वो बैल और ऊंटों की तरह थोड़ चर रहे हैं, खा रहे हैं थोड़ को। फरमाया कि इन शजरत ज़क्कूम तो आमुल असीम, बेशक ये थोड़ के दरख अल्लाह गुनहगारों को जहन्नम के अंदर खिलाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुकम्मल हिफाजत फरमाए। कभी एक कांटा तो खा के देखो क्या हाल होता है। मछली का कांटा गले में फंस जाता है, कितनी तकलीफ होती है, और वो थोड़ का कांटा, और वो भी एक थोड़ पर सैकड़ों कांटे होते, और वो भी जहन्नम के। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हुजूर ने पूछा ये कौन लोग हैं, तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं, ये वो मर्द और औरतें हैं जो दुनिया के अंदर अपने माल में से ज़कात अदा नहीं करते थे, जो ज़कात नहीं निकालते थे। है ना, रमजान का महीना आ रहा है, मुसलमान ज़कात चोर बन गए। उधर ज़कात नाके बंद हो गए, यहां ज़कात चोरी भी चालू हो गए, ज़कात चोर हो गए मुसलमान। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम का बुनियादी फर्ज कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हबा वल्फिद्दा वला युन्फिकूनहा फी सबीलिल्लाह फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौमा युहमा अलैहा फी नार जहन्नम। वो लोग जो सोना और चांदी को घर में जमा कर कर के रखते हैं और उसमें से ज़कात नहीं देते, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, अल्लाह फरमाते हैं उनको सुनाओ कि तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह इसी सोने और चांदी को कयामत के दिन जहन्नम की आग में गर्म करेंगे और पेशानी के ऊपर, करवट के ऊपर और पीठ के ऊपर इसी सोने चांदी को गरम कर करके अल्लाह ताला दाम देंगे, दाम इसी के जरिए से। एक हदीस में आता है गंजा सांप जहरीला, वो भी गंजा गंजा जिसके ऊपर बाल न होवे, इतना जहर वाला के बाल उसके उतर गए ऐसा सांप अल्लाह ताला गले में डालेंगे और वो सांप मुंह पर काटेगा, मुंह पर, और वो कहेगा अना मालुका व अना कंजुका, मैं तेरा माल हूं, तेरा खजाना हूं, तूने दुनिया में जो माल जमा करके रखा था और उसमें से जकात अदा नहीं की थी, अल्लाह ने उसी माल को जहरीले सांप की शक्ल में बदल दिया और वो काट रहा है। ये जकात चोरी। आज मुसलमान क्या कहते हैं, हमारे पास पैसे ही कहां है कि जकात दे रहे। हालांकि जकात का निसाब बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर, बहुत मुख्तसर। सीधा सादा हिसाब में आपको कहूं, किसी के पास थोड़ी चांदी है, थोड़ा सोना है, दो पांच रुपए की बचत है और तीनों की वैल्यू मिलाकर के 6,500 रुपए तकरीबन हो जाते हैं, समझो उसके ऊपर जकात वाजिब हो गई। इसलिए जिसके पास जितनी चांदी, जितना सोना, जितना पैसा हो, मौलाना उस्मान साहब की गर्दन पकड़ो के हिसाब करके हमको दो कितनी जकात निकालने की, वरना कहेंगे कि 7.5 तोला सोना है ही कहां, 52.5 तोला चांदी है ही कहां, अपने फायदे के मसले याद है, आगे कुछ याद नहीं है। जकात के मसले बहुत बारीक है, अपनी अकल से काम मत लो, उलमाए किराम से रहबरी लो इस बारे में। तो कहा हुजूर ये वो लोग हैं जो जकात नहीं निकालते थे, उनकी ये सजा हो रही है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले, ये जो 6,500 का हिसाब बताया मैंने, ये चांदी के मुख्तसर निसाब के आज के भाव के हिसाब से बताया है। फिर हुजूर आगे चले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक जगह पर अजीबो गरीब कौम है, कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें हैं, और उनके सामने दो तपेली में गोश्त रखा हुआ है। एक तपेली में जो गोश है वो एकदम खुशबू वाला, जाफरान वाला, बेहतरीन कोरमा पका हुआ है, जैसे रमजान की इफ्तारी की पार्टी में होता है, और दूसरी तपेली के अंदर एकदम सड़ा हुआ, बदबू वाला, जिसमें कीड़े पड़े हुए हो, एकदम खतरनाक गंदा गोश्त रखा हुआ है। अब अकलमंद आदमी क्या सोचता है कि भाई सामने अच्छा गोश्त है वो खाओ, ये सड़ा हुआ क्यों खाते हो। लेकिन आज सारी दुनिया की अकल मारी गई है, घर में अच्छा और फ्रेश खाना है वो कोई नहीं खाता, हर एक लारी पे जाके गंदा खाना खाता है, हर एक को उसी की चाट लगी हुई है। तो दो तपेलियों में खाना है, एक में खुशबूदार उम्दा किस्म का बेहतरीन गोश है और दूसरी तपेली के अंदर सड़ा हुआ गोश है। अब ये मर्द औरत क्या कर रहे हैं, अच्छा खुशबू वाला गोश नहीं खाते, वो सड़ा हुआ खाते, क्योंकि चॉइस सड़ी हुई हो गई ना इस वजह से, वो सड़ा हुआ खाते, अच्छा गोश नहीं खाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल ने कहा, हुजूर ये वो मर्द और वो औरतें हैं, जरा कान खोल के सुन लीजिए। कहा हुजूर ये वो मर्द हैं कि घर के अंदर हलाल बीवी मौजूद थी, लेकिन हलाल बीवी को छोड़ करके पराई औरत के साथ जो है रात गुजारते थे, और ये वो औरतें हैं कि उनका शोहर होने के बावजूद दो नंबर के अंदर पराए मर्दों के साथ जिना करवाती थी। ये वो औरतें और वो मर्द है कि उनको कयामत तक ये सजा है कि वो सड़ा हुआ कीड़े वाला गोश्त खा रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, फरमाया कि ला तकरबु ज़िना इन्नहु कान फाहिशा, ला तकरबु ज़िना इन्नहु कान फाहिशा वसा असबीला,
ایمان والو تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بہت برا اور گندگی کا راستہ ہے، بے حیائی اور بے شرمی کا راستہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے جوان بھائیوں کی، ہماری جوان بہنوں کی، اللہ حفاظت فرمائے. چونکہ ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، اس لیے ایک بات میں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زنا کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر عورتیں کچھ کنٹرول کر لیوے تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے کیس تو سب جو ہے زبردستی کے ہوتے نہیں ہیں، 98% وہ ہوتے ہیں جو خوشی سے ہوتے ہیں. تو اگر عورتوں میں حیا اور شرم آ جائے، اسلامی پردہ آ جائے اور وہ اپنی ذات اور کیریکٹر کی حفاظت کر لے تو انشاءاللہ زنا کے دروازوں کے اوپر تالے لگ جائیں گے. بہت احتیاط سے کہوں تو 2% زبردستی زنا کے قصے ہوتے ہیں، بلاتکار کے کیس، باقی 98% وہ ہوتے ہیں جو دونوں کی خوشی سے ہوتے ہیں. یہ زنا کاری قیامت کی نشانی ہے، حرامی اولاد کا زیادہ ہونا، زنا کا زیادہ ہو جانا، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. تو کہا حضور یہ زنا کار لوگ ہیں کہ جو سڑا گندا ہوا کیڑے والا گوشت کھا رہے ہیں، اتنی خطرناک سزائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک سفر میں دیکھی. اور بھی 2-4 چیزیں ہیں، ایک چیز اور عرض کر دوں. ایک آدمی کو حضور نے دیکھا اسی معراج کے سفر میں کہ اس کے اوپر بہت سارا بوجھ ہے لکڑیوں کا، اٹھا نہیں پاتا، تھک جاتا ہے، پریشان ہے، اٹھا نہیں پاتا، پھر بھی وہ لکڑیاں جمع کر رہا ہے اپنے کندھے پر. ارے بھائی جتنی ہے اتنی تو اٹھا، وہ تو اٹھا نہیں سکتا، اسی میں تو پریشان ہے اور لا رہا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہیں کہ ان کے اوپر لوگوں کے حقوق باقی ہے اور پھر بھی لوگوں کا لوٹ رہے ہیں، لوٹتے چلے جا رہے ہیں. آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، پہلے سے لوگوں کے لاکھوں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی بھی کروڑوں کھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، نان اسٹاپ چلے جا رہے ہیں، اس کا کھاؤں اس کا کھاؤں، اس کا دباؤں اس کا دباؤں، سب کا کھا جاؤں، میرا کوئی نہ کھاوے. آج اسی کے اندر دنیا مر رہی ہے. تو حضور یہ وہ لوگ ہیں، ان کو یہ سزا ہے برزخ کی زندگی کے اندر. اور ایک بات اور عرض کر دوں، یہ نہیں کہ بھائی کچھ بات ایسی آئی تو ہم اس کو چھپاتے چلے، ایک اور چیز بھی ہے اس میں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک جگہ کے اوپر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زبان کو لوہے اور آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، آگ کی کاتر ہے اور ان کی زبان کو کاٹا جا رہا ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ آگ کی کینچی اور زبان کاٹی جا رہی ہے، پھر اچھی ہوتی ہے پھر کاٹی جا رہی ہے. حضور نے پوچھا یہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے. اور انہی کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ. اے ایمان والو جو چیز تم کرتے نہیں ہو وہ لوگوں کو مت کہا کرو. آج ہماری دعوت کیوں اجڑ رہی ہے؟ کیوں دعوت کے میدان کی کھیتیاں سوکھ رہی ہے؟ ذرا سوچو، جہاں ہم لوگوں کو باتیں بتلاتے ہماری زندگیاں کوری ہے،
हमारी जिंदगियों में अमल नहीं है, इसीलिए आज हमारी बातों का वजन नहीं है। हुजूर ने उन लोगों को भी मेराज में देखा। फिर वहां से आगे चले तो एक जगह बहुत खुशबूदार हवाई महक गया, दिल दिमाग सुरूर से भर गया। जिब्रेल पूछ रहे, हुजूर कुछ खुशबू आ रही? कहा, बहुत उम्दा खुशबू है। कहा, हुजूर ये जन्नत की हवाएं आ रही है, जो खुशबू आप महसूस कर रहे हैं। कुछ कदम आगे बढ़े तो एकदम खतरनाक बदबू आई। कहा, हुजूर ये जहन्नम की बदबू निकल करके आ रही है। उड़ते 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 चल करके चंद सेकंडों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा फलस्तीन के अंदर। अल्लाह उस किबले अव्वल को यहूद बेबहबूद के हाथों से पाक फरमा दे। हुजूर वहां पहुंचे, जिसके लिए कुरान में अल्लाह ने इशारा फरमाया, फरमाया के सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। पाक है अल्लाह की जात जो अपने नबी को रात के एक मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम यानी मक्का से मस्जिद अक्सा यानी फलस्तीन तक ले गए। अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा के जिसके चारों तरफ बड़ी बरकत वाली जमीन है, पूरे मुल्क शाम की जमीन बड़ी बरकत वाली जमीन। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहिम इस पहाड़ पे चढ़ो, जबले लबनान पर चढ़ो और दूर तक नजर डालो, जहां तक तुम्हारी नजर जाए। ए इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहिम इस पहाड़ पे चढ़ो और दूर तक देखो, जहां तक तुम्हारी नजर पहुंचेगी उस पूरी जमीन को हम बरकत वाली जमीन बना देंगे। ये अल्लाह के नबी की बरकत। जहां तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा पूरी जमीन बरकती हो गई। उसकी बरकतें देखनी हो जाके देख लो मुल्के शाम में। आज भी कुरान ने उसकी बरकत की शहादत दी। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, कि उसके आजू बाजू की पूरी जमीन बड़ी बरकत वाली। मस्जिद अक्सा हुजूर पहुंचे, बाहर एक पत्थर है जिसका नाम है सखराए बैतुल मुकद्दस। वहां पर एक पत्थर है दूसरा, या वही पत्थर, उसमें एक सुराख है। उस सुराख में जमाना गुजरने की वजह से मिट्टी भर गई थी। कोई सुराख हो सैकड़ों बरस तक आप इस्तेमाल न करो, मिट्टी भर जाती है। जिब्राइल अमीन ने उस सुराख को साफ किया है। ये वो सुराख है जिसमें तमाम नबियों ने, जो भी बैतुल मुकद्दस आए, उन्होंने अपने अपने बुराक को उसी सुराख में बांधा है। वो पत्थर और वो सुराख आज भी मस्जिद अक्सा के अंदर उसी हालत में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुराक को वहां बांधा है और बांध करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में तशरीफ ले गए। पहले दो रकात तहियतुल मस्जिद की नमाज पढ़ी, ये हुजूर की सुन्नत। आप मस्जिद अक्सा मेराज में पहुंचे, वहां भी आपने दो रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ी। थोड़ी देर हुई, किसी अजान कहने वाले ने अजान पढ़ी और इकामत कही गई। पूरी मस्जिद आधी रात को नमाजियों से भरी हुई है, पूरी मस्जिद लबालब भरी हुई है। अब मुसल्ला इमाम का खाली, सब मुसल्ली तो है मौजूद, इमाम का मुसल्ला खाली। हजरत जिब्रील अमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और पकड़ करके हुजूर को मुसल्ले के ऊपर खड़ा कर दिया, हुजूर आप नमाज पढ़ाइए। आपने नमाज पढ़ाई, नमाज से सलाम गिराया तो जिब्राइल अमीन ने पूछा, हुजूर आपको मालूम है ये कौन मजमा है इतना बड़ा और आपने किसको नमाज पढ़ाई? हुजूर ने फरमाया, नहीं मुझे खबर नहीं। तो जिब्राइल अमीन कहने लगे कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो पूरी मस्जिद भरी हुई है, ये जो मजमा नजर आ रहा है, ये कोई और नहीं है बल्कि आदम अलैह सलाम से लेकर दुनिया में जितने भी पैगंबर आए सारे के सारे नबी इस वक्त इस मस्जिद के अंदर जमा है और आपने जो इमामत कराई ये तमाम नबियों को इमामत कराई और ये इमामत इस बात की निशानी है कि आप तमाम नबियों के सरदार हैं, ये इसकी निशानी है। और इस नमाज में हुजूर नबियों के अलावा बहुत से फरिश्ते भी शरीक हुए हैं, आपने सबको इमामत कराई। जब नमाज से फारिग हुए तो बहुत सारे नबियों से मुलाकात हुई, सलाम सब नबियों से मुलाकात हुई, सलाम कलाम हुआ, तस्बीह तहमीद हुई, जिसकी तफसीलात बहुत लंबी है, हर नबी के साथ क्या क्या बातचीत हुई, बड़े बड़े नबियों के साथ, बहुत सी अहादीस की किताब में उसकी भी तफसीलात है। बहरहाल वो मुलाकात से जब हुजूर फारिग हुए, आप मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो एक रिवायत के मुताबिक 4 प्याले और एक रिवायत के मुताबिक 3 प्याले हुजूर के सामने लाए गए। एक प्याले में दूध था, दूसरे प्याले के अंदर पानी था, तीसरे प्याले के अंदर शहद था और चौथे प्याले के अंदर शराब भरी हुई थी। 4 प्याले हुजूर के सामने लाए गए और आपको कहा गया पसंद फरमा लीजिए जो भी आपको लेना हो। वो मेराज की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 प्यालों में से दूध का प्याला आपने पसंद फरमा लिया, जो फितरत है। जिब्रील अमीन ने कहा, हुजूर अगर आप शराब का प्याला उठाते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती और आप पानी का प्याला उठाते तो आपकी उम्मत गर्क और डूब जाती, लेकिन आपने दूध का प्याला उठाया, उसको नोश फरमाया। आप मस्जिद से बाहर निकले और मस्जिद से बाहर निकलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसमान से एक सीढ़ी लाई गई, अजीबोगरीब सीढ़ी, ऐसी सीढ़ी कि आज के विज्ञान के जमाने के अंदर दुनिया के लोग बना नहीं सके, ऐसी सीढ़ी जमीन से लेकर आसमान तक की सीढ़ी और बेहतरीन किस्म की सीढ़ी। हुजूर बुराक पर बैठे और वो बुराक सीढ़ी पे चढ़ने लगा। कहते हैं कि नेक मोमिनीन की रूह इसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके मौत के बाद आसमान पर जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठे, बुराक सीढ़ी चढ़ने लगा और फटाफट सेकंडों के अंदर बुराक आसमान पर पहुंचा। जब आसमान पे पहुंचा बुराक तो जिब्राइल अमीन ने जाकर के पहले आसमान का दरवाजा खिटखिटाया। जो दरवाजा खिटखिटाया तो अंदर से सवाल हुआ, कौन? तो कहा जिब्राइल। का तुम्हारे साथ कौन? तो कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर से फरिश्ते पूछ रहे, इनको आने की परमिशन है? तुम तो फरिश्ते हो लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने की परमिशन है? तो कहा हां, अल्लाह ने उनको बुलाया है, वो अल्लाह के बुलाए हुए। फटाफट दरवाजा खोल दिया। बाज रिवायात में है कि पूरी सीढ़ी के ऊपर अल्लाह ने फरिश्तों को खड़ा कर दिया था, जैसे कोई मिनिस्टर साहब आते तो सब तरफ खाकी वर्दी वाले खड़े हो जाते, या नबी के इस्तकबाल के लिए पूरी सीढ़ी के ऊपर फरिश्ते अल्लाह ने खड़े कर दिए। हुजूर पहले आसमान पर पहुंचे, फरिश्तों ने शान से इस्तकबाल किया। एक शायर ने उसका नक्शा खींचा है, ताके पहुंचे नबी सिदरा पे जब मुंतजिर वहां मलक मलक, पहुंचे नबी फलक पे जब जहां मुंतजिर मलक मलक। फलक कहते हैं आसमान को। पहुंचे नबी फलक पे जब जहां मुंतजिर मलक मलक, मलक कहते हैं फरिश्ते को। पहुंचे नबी फलक पे जब जहां मुंतजिर मलक मलक, बड़ा इंतजार अर्श पर बड़ा इंतजार अर्श पर, बलगल ओला भी कमाल ही पहुंचे। शानदार इस्तकबाल हुआ, लाखों हजारों फरिश्ते इस्तकबाल में खड़े हैं। आप जब पहले आसमान पर पहुंचे तो एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। अजीबो गरीब वो बुजुर्ग है, अपनी दाहिनी तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, बाहिनी तरफ देखते हैं तो रोते हैं। उनकी दाहिनी तरफ एक दरवाजा है, उसमें से खुशबुएं आ रही है, बाईं तरफ एक दरवाजा है, वहां से बदबू आ रही है। हुजूर ने जिब्रेल से पूछा, जिब्रेल ये बुजुर्ग कौन है? हुजूर ने उनसे सलाम किया, मुलाकात की। जिब्रेल अमीन ने बतलाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुजुर्ग जो है वो हम सब के यानी तमाम इंसानों के अब्बा जान हजरत आदम अलैहिस सलातु वस्सलाम है। पहले आसमान पर उनसे मुलाकात हुई। और जो जमनी तरफ के लोग थे जिनको देखकर वो खुश होते हैं, तो कहा ये आदम अलैहिस सलाम की औलाद में से वो लोग हैं जो जन्नती है, और बाईं तरफ वाले वो जहन्नमी हैं। अल्लाह दाईं तरफ वालों में हमको शामिल फरमा दे। फिर हुजूर आगे चले, तवील सफर करके दूसरे आसमान पर पहुंचे। वहां भी इसी तरीके से दरवाजा खिटखिटाया। मैं वाकयात को बीच में हस्प कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, सुबह इम्तिहान लेना है। दूसरे आसमान पर हुजूर पहुंचे, वहां जाके दरवाजा खुलवाया तो दूसरे आसमान के ऊपर अल्लाह के नबी हजरत यहिया और हजरत ईसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। फिर तीसरे आसमान पे चले तो वहां हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। और मुख्तसर इशारा करो, हुजूर ने फरमाया कि तीसरे आसमान पर जो यूसुफ अलैहि सलाम से मुलाकात हुई तो मैंने उनके चेहरे को जो देखा तो हुस्न और खूबसूरती का अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा हिस्सा दे रखा है। फिर चौथे आसमान पर गए, वहां हजरत इदरीस अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पे गए, वहां हजरत हारून अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर पहुंचे, वहां मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। और सातवें आसमान पर जो पहुंचे तो वहां अजीब एक मंजर देखा। सातवें आसमान पर एक काबा है, जैसे मक्के मुकर्रमा में हमारा काबा है, सातवें आसमान पर भी एक काबा है। और वो जो काबा है हमारे दुनिया के काबा की बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर है, कि अगर वो सातवें आसमान का काबा गिरे तो सीधे हमारे दुनिया के काबा पर गिरे, इतनी सीधी लाइन में। और वो काबा फरिश्तों का काबा है और उसका नाम है बैते मामूर, जैसे हम बैतुल्लाह कहते हैं उसका नाम है बैते मामूर। और उसकी कसम कुरान में एक जगह पर अल्लाह ने खाई है, फरमाया के वल बैतुल मामूर वस्सक़्फ़ुल मरफू, कसम है बैते मामूर की जो फरिश्तों का किबला और काबा है, फरिश्तों का काबा, वहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। और मेरे बुजुर्गों वो बैते मामूर पता नहीं कब बना होगा, कितने हजार साल पहले बना होगा,
रिवायात में आता है कि रोजाना 70,000 70,000 फरिश्ते रोजाना उस बैते मामूर का तवाफ करते हैं जब से वो बना है। और इससे अजीब बात सुनो, जब से वो बैते मामूर बना है रोजाना 70,000 जो फरिश्ते तवाफ करते वो नए नए फरिश्ते तवाफ करते हैं। जिस फरिश्ते ने एक मर्तबा तवाफ कर लिया कयामत तक उसका दूसरी मर्तबा नंबर नहीं आ सकता। तो सोचो अल्लाह के यहां फरिश्तों की तादाद कितनी होगी, कितनी संख्या होगी कि उस काबा के बने हुए हजारों साल हो गए और रोजाना नए नए 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि हम माशाल्लाह एक बार तवाफ पे सबर नहीं होता, माशाल्लाह 50-50 तवाफ करते हैं, 100-100 तवाफ करते हैं और बार बार तवाफ करते हैं। अल्लाह जिंदगी में बार बार मक्का मदीना ले जाए। और फरिश्तों का मामला ये कि एक बार तवाफ किया बैते मामूर का दोबारा चांस ना आए। अब हुजूर पहुंचे सातवें आसमान पर बैते मामूर पर, तो वहां देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलात व सलाम सातवें आसमान पर बैते मामूर को टेक लगा के बैठे हुए थे। दुनिया में काबा बनाया, अल्लाह ने आसमान पर भी काबा दिया। दुनिया में इब्राहिम अलैहि सलाम ने काबा बनाया, अल्लाह ने वहां भी काबा दिया, वहां टेक लगा के आराम से बैठे हुए थे। हुजूर ने जाके सलाम किया, मुलाकात की। हजरत इब्राहिम अलैहि सलात व सलाम ने मुलाकात की, सलाम की, तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जब वापस दुनिया में जाओगे तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुंचा देना। इब्राहिम अलैहि सलाम ने सलाम कहलवाया, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहलवाना। इसीलिए हम नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, ये भी एक हिकमत है उसकी। फिर अपनी उम्मत को मेरा एक पैगाम दे देना, अपनी उम्मत से यूं कहना कि जन्नत की जो जमीन है ना वो बिल्कुल चटियल मैदान की तरह जमीन है, एकदम खुले मैदान की तरह। वहां पर जो बंगले और नहरें और बागीचे हैं वो तो जब एक मुसलमान दुनिया में रह करके नेकियां करता है, अच्छे आमाल करता है, और नेकियां करके जब वहां भेजता है तो उसके बदले के अंदर वहां बंगले और बागीचे बनते हैं, वरना तो वो जमीन बिल्कुल चटियल है। जैसे कोई जमीन लेने करके प्लॉटिंग हो जाती है, फिर जितने पैसे बेटा लंदन से बेचता है इतनी देर तक बंगला बनता है, और वहां से पैसे आना बंद तो यहां प्लास्टर होना भी बंद, दीवार दिख रही, अब्बा को कोई पूछे कि बाबा क्यों बांधकाम बंद कर दिया तो क्या वहां से एनर्जी आनी बंद हो गई, इसलिए बांधकाम भी बंद हो गया। बिल्कुल ऐसी मिसाल है, जब तक जिक्र नमाज तिलावत चालू रहेगी फरिश्ते काम चालू रखेंगे, और जैसे हमने नमाज जिक्र तिलावत को बंद कर दिया फरिश्ते वहां बंगले को अधूरा छोड़ देंगे, कहेंगे कि दुनिया से आता ही नहीं फिर हम बनावे कैसे। इसलिए इसको तो मरते दम तक चालू रखना है, मरते दम तक। तो कहा अपनी उम्मत को मेरा ये पैगाम पहुंचा देना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले, जो आप आगे चले तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान से आगे बढ़ रहे, एक बेरी का दरख्त नजर आया, बोरडी जिसको हम कहते हैं, ऐसी मुतबर्रक बोरडी कि कुरान में उसका जिक्र मौजूद है। फरमाया वन्नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى.
یہ ہے سدرۃ المنتہا، ایک آسمان کے اوپر بورڈی کا جھاڑ ہے. حضور فرماتے کہ وہ بورڈی معراج کی رات کے اندر پوری روشنی اور عجیب و غریب رنگ سے بھری ہوئی تھی. میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ کیا چیز تھی، عجیب و غریب. یہ بورڈی جو ہے نا، یہ آخری بارڈر ہے. وہاں جا کر کے نیک اعمال پھر آٹومیٹک اوپر جاتے، وہاں تک فرشتے لے جاتے، دعائیں بھی وہاں تک فرشتے لے جاتے، نیک اعمال بھی وہاں تک فرشتے لے جاتے، وہاں سے اوپر آٹومیٹک جاتے. یہ لاسٹ بارڈر ہے مخلوق کے جانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، وہاں کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم چلنے کی آواز آئی. قلم چلنے کی، آپ کبھی برتن والوں کی دکان پہ گئے ہو تو جب ہم برتن خریدتے نام لکھواتے تو وہ مشین سے نام لکھتے ہیں تو کیسی آواز ہوتی ہے؟ اس قسم کی قلم کی چلنے کی آواز آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سے فرشتے لکھنے میں مشغول ہیں. پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا حضور یہ ہے تقدیر لکھنے کی جگہ، مقام صریح الاقلام، جہاں فرشتے بیٹھ کر کے انسانوں کی تقدیر لکھتے ہیں. حضور نے وہ بھی اپنی آنکھ سے دیکھا. اب وہاں جو پہنچے وہاں سے بھی آگے جانا ہے، یہ تو ساتویں آسمان سے بھی اوپر ہم چل رہے ہیں اس وقت. وہاں جب پہنچے تو حضرت جبرائیل امین کہنے لگے، حضور مکہ مکرمہ سے سفر ساتھ میں ہو رہا ہے، مسجد اقصا گئے، ساتوں آسمان کی سیر کی، سب کچھ ہے، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میری بارڈر آ گئی، میرے ویزا کی حد یہی تک ہے، میں آپ کو یہی چھوڑ دیتا ہوں، یہاں سے آگے آپ کو اکیلے جانا ہے، آپ اکیلے جائیے. پہنچے جب سدرہ پر، پہنچے جب سدرہ پر تو جبرائیل یہ کہہ کر روکے، ہست سوزا اینت جلی منتانم پر زدن. میرے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہنچے جب سدرہ پر تو جبرائیل یہ کہہ کر روکے کہ ہست سوزا اینت جلی منتانم پر زدن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہاں سے آپ اکیلے تشریف لے جائیے، میں نہیں آتا. تو حضور نے کیا فرمایا؟